शिवांशा वेद के साथ ऑफिस आई हुई थी। वेद मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में चला गया था तो वहीं शिवांशा वेद के केबिन में बैठी हुई थी। इस बीच तेज भी वहां पर पहुंच गया था। जब तेज ने शिवांशा को अकेले वहां देखा तो शिवांशा की मासूमियत देखकर वो इसकी टांग खींचने लगा। शिवांशा को कंफर्टेबल होने का बोलकर तेज ने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया था और साथ ही अब वो उसे डरा रहा था कि अगर उसने जरा भी खाना वेस्ट किया तो वेद गुस्सा हो जाएगा। अपने सामने टेबल पर इतना सारा खाना देखकर शिवांशा खुद में सिमटने लगी थी। तेज उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। शिवांशा के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर उसने अपने होंठों को कसकर भींच लिया था ताकि उसकी हसीना निकल जाए। शिवांशा ने कुछ देर तक उस खाने को देखा और फिर नज़र उठाकर तेज की तरफ देखकर भौहें उठाकर कहा, मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाऊंगी। सोच लीजिए, तेज ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, आप तो अपने पति को अच्छे से जानती हैं ना, उनके एथिक्स अलग ही हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन्हें खाना वेस्ट करने वाले लोगों पर आता है, तो फिर सोचिए कि आपको उनके गुस्से का सामना करना है या फिर ये खाना खत्म करना है। अब जल्दी शुरू कीजिए, उनके आने से पहले ये सारा खाना खत्म हो जाना चाहिए। क्या? शिवांशा ने हड़बड़ाकर कहा। क्या नहीं भाभी, कब तक आप इसे खत्म करेंगी? तेज ने गंभीर सा चेहरा बनाकर कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, उसे केबिन के दरवाजे पर एक सख्त आवाज सुनाई दी। हो गया तुम्हारा? वो वेद की आवाज थी और वेद को अचानक अपने सामने देखकर तेज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जबकि शिवांशा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। वेद ने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा, जो कुछ ज्यादा ही नर्वस नजर आ रही थी, और फिर टेबल पर रखे ढेर सारे खाने की तरफ। वेद के पीछे वंश भी खड़ा हुआ था। टेबल पर रखा इतना सारा खाना, शिवांशा की घबराहट और तेज का अचानक चौंक कर शांत खड़े हो जाना, ये सिचुएशन बताने के लिए काफी थी कि वहां क्या चल रहा था। वंश ने सिर हिलाया और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, लगता है ये भी आज यहाँ से अच्छी खासी डांट सुनकर जाने वाला है। वेद ने सिर हिलाया और अंदर बढ़ते हुए कहा, ये तुम्हारा आर्मी कैंप नहीं है जहाँ हर नए आने वाले सोल्जर के साथ तुम लोग रैगिंग करते हो। मैं बस भाभी से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा था, एक दूसरे को थोड़ा जानना चाहिए, तेज ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेशक, चलो तुम्हारी इस जान पहचान के सिलसिले में मैं भी शामिल हो जाता हूँ, वेद ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया। उसके बाद वो शिवांशा के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसने उसे सहज करने के लिए उसका हाथ अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो ये, शिवांशा हड़बड़ाते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से ठीक से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं वेद उसे डांट ना दे। पहले शिवांशा इस तरह बात करती थी तो वेद को बहुत चिढ़न होती थी और साथ ही वो उसके इस तरह बात करने पर उसे डांट भी दिया करता था, लेकिन अब उसे उसकी घबराहट और डर अच्छे से समझ आ गया था। तेज जल्दी से बोला, लगता है भाभी काफी अनकंफर्टेबल हो रही हैं, हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं, क्यों ना आप दोनों बात कीजिए साथ में। और हाँ, देखिए ना, मैंने आपके लिए पहले ही लंच मंगवा दिया है, बोन अपेटीट भाई और भाभी। तेज वहां से खिसकने की सोच रहा था तभी प्रतीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तेज ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, रास्ता छोड़िए ना प्रतीक भाई, आप मेरे भाई हो या फिर दुश्मन? फिलहाल तुम मुझे अपना दुश्मन ही समझ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है भाभी को इस तरह परेशान करने के बाद भाई तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? प्रतीक ने तिरछा मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आप हमेशा वेद भाई की टीम में ही क्यों रहते हो? तेज मुंह बनाकर बोला। शिवांशा ठीक से कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन वेद सब समझ गया था। उसने गहरी सांस ली और तेज की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो तुमने ये खाना हम दोनों के लिए मंगवाया है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ शिवांशा और तुम मौजूद थे। जब मैं यहाँ आया था तो प्रतीक ने मुझे मीटिंग रूम में बताया था कि तुम ऑफिस के डाइनिंग एरिया में लंच कर रहे हो और बाद में मुझसे मिलना चाहते हो, फिर इतना खाना किस लिए मंगवाया है? भाभी के लिए, तेज जल्दी से बोला। तुम्हें शिवांशा भाभी को देखकर क्या लगता है तेज, वो इतना खाना खा पाएगी क्या? वंश ने बोरियत भरे लहजे में कहा, साफ साफ बोलो ना कि उन्हें परेशान कर रहे थे। जरूर तुमने उनसे ये कहा होगा कि भाई को खाना वेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें ये पूरा खाना खत्म करना होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाभी? शिवांशा से कन्फर्म करने के लिए वंश ने शिवांशा की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया था। आप भी वंश भैया? तेज ने मुंह बनाकर कहा। हाँ बिल्कुल, वंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। थोड़ी देर पहले मुझे भी डांट पड़ी थी क्योंकि मेरा गलत रिएक्शन बाहर निकल कर आया था। आई एक्सेप्ट कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुमने तो ये जानबूझ कर किया है। ऐसे कैसे वेद भैया के होते हुए तुम हमारी भाभी को परेशान कर सकते हो? वंश की बातों से तेज समझ गया था कि थोड़ी देर पहले उसे ही डांट पड़ी थी और अब उसका यही इरादा था कि तेज की भी क्लास लगाई जाए। तेज ने मासूम सा चेहरा बनाकर वेद की तरफ देखा। वेद ने कहा, एक बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तुमने ऑर्डर किया है तो तुम ही इसे खत्म करोगे। प्लीज इतना अत्याचार मत कीजिए, मैं यहाँ आप ही के काम से आया था। अब एक छोटे बच्चे से गलती हो गई तो क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते हैं? तेज बोला। हालांकि तेज काफी हल्के लहजे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातों ने वेद के चेहरे पर हल्के शिकन के भाव ला दिए थे। वो उसके काम से वहां आया था, इसका मतलब वो अंकुश के बारे में बात करने के लिए वहां पर आया था। अंकुश पर ध्यान रखना और उसकी सभी जिम्मेदारी उसी पर सौंपी गई थी। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि मजाक में भी खाना या रिसोर्सेज वेस्ट करने के बारे में मत सोचना, वेद ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। उसके बाद उसने प्रतीक की तरफ देखकर कहा, ऐसा करो, इसे पैक करके स्लम एरिया में भिजवा दो। प्रतीक ने तुरंत डाइनिंग एरिया में काम करने वाले सर्विंग स्टाफ को बुलाया और खाना वहां से हटवा दिया था। वंश भी कुछ फाइल्स लेने के लिए आया था, तो वो उन्हें लेकर चला गया। वहीं वेद ने तेज को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। केबिन में अब सिर्फ वेद और शिवांशा ही मौजूद थे। वेद शिवांशा के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, इतना डर क्यों जाती हो? मुझे लगा कि आप मुझे डांट लगाओगे, शिवांशा ने अटकते हुए कहा। और वो किस लिए? वेद भौहें चढ़ाकर बोला। तेज बचपन से ही बहुत शरारती है और उसकी आदत अभी भी गई नहीं है। आगे से वो सामने आए तो उसकी इन छोटी मोटी शरारतों के लिए तैयार रहना, और दूसरा, सबसे बात किया करो ताकि उनके साथ कंफर्टेबल हो सको। शिवांशा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी और वो वेद के चेहरे की तरफ देखने लगी। जब वो वेद के साथ चौहान पैलेस में आई थी, तब वेद ने सबसे पहले उसे यही कहा था कि वो उसकी फैमिली से कम बात करेगी और उनके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाएगी। वेद की उस बात को मानते हुए शिवांशा ने कभी भी उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ आज तक ठीक से बात नहीं की थी। शिवांशा को चुप देखकर और उसकी आंखों में उलझन भरे भावों को महसूस करते हुए वेद बोला, यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें उनसे दूर रहने के लिए कहा था और अब मैं ही उनके साथ कंफर्टेबल होने को कह रहा हूँ? शिवांशा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, आपकी भी कोई गलती नहीं थी मेरे दादा।
शिवांशा के आगे बोलने से पहले ही वेद ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। उसने एक बार इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, आगे से तुम्हारे मुंह से उनका जिक्र भी नहीं होना चाहिए, और इस बात को भूल जाओ कि तुम किस फैमिली से आती हो। अब से तुम्हारी पहचान मुझसे और मेरी फैमिली से होने वाली है। गलती से भी किसी के सामने मत कहना कि तुम कौन हो, मेरे सामने भी नहीं। वेद का डर शिवांशा समझ सकती थी। सिर्फ वेद ही नहीं, शिवांशा को भी इस बात का डर सताता रहता था कि उसकी पहचान चौहान फैमिली के सामने न आ जाए। शिवांशा ने हाँ में पलके झपका दी। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। मेरा यहाँ पर काम लगभग खत्म हो गया है, आगे वंश और आराध्या देख लेंगे, वेद ने उसे समझाया और फिर केबिन से बाहर आ गया था। केबिन के आगे बने वेटिंग एरिया में तेज बैठा हुआ था और इस वक्त उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वेद भी समझ गया था कि वो यहाँ अंकुश की ही बात करने के लिए आया था। आपका वो नया पालतू कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, उसे आपसे मिलना है, और मुझे नहीं पता था कि उसे आपसे इतना प्यार है कि आपसे मिलने की जिद में वो पानी तक नहीं पिएगा, तेज ने वेद के पास आते ही कहा। हाँ तो मत पीने दो, जब मेरा मन होगा मैं तभी देखने आऊँगा। दूसरी बात, उसका स्पेशल ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए, वेद ने दांत फींचते हुए कहा। तेज ने उसकी बात पर सिर हिला दिया था। वो वेद से बात करके जाने को हुआ, तभी अचानक पीछे पलटने के बाद वो वापस वेद की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, वैसे भाभी काफी क्यूट हैं और इनोसेंट भी, आप थोड़ा लोगों को कम डरा कर रखा करो, सोचो आपकी पत्नी की आपके सामने जुबान नहीं खुल रही थी, तेज वेद को एडवाइस दे रहा था। तभी वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसके शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसने जल्दी से कहा, मैं तो बस बता रहा हूँ कि मुझे भाभी अच्छी लगी, बाद में मिलता हूँ, उनसे भी जरूर मिलूंगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी हरकत पर कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसे वापस तंग करने का लाइसेंस मिल गया। अगली बार उन्हें परेशान किया तो सोच लेना क्या होगा, वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज जरूर सख्त थी, लेकिन हाँ, उसके चेहरे के भाव नर्म थे। तेज जल्दी से बिना कुछ बोले वहां से निकल गया था, तो वहीं वेद भी वापस शिवांशा के पास आ गया था। अपने कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद वेद शिवांशा को लेकर घर आ गया था। शिवांशा को यही लगा था कि वेद उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन जरूरी काम का बोलकर वेद वहां से निकल गया था।